अगला शीर्षक है डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा रचित केशव का हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में केशव एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था, उनका महत्व भी बहुमुखी है। उनका स्थान निर्दिष्ट करने के लिए उनके किसी एक पक्ष मात्र को ध्यान में रखकर उन्हें किसी कवि से छोटा या बड़ा कह देना आलोचना दृष्टि का संकोच ही होगा। फिर उनके किसी पक्ष को लेकर किसी सजातीय पक्ष वाले से ही तुलना ठीक होगी। देव का स्थान निर्धारित करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने ठीक ही लिखा है कि हिंदी काव्य एक सागर के समान है। इसमें अनेक धाराएं प्रवाहमान हैं जो दिशा परिमाण तथा गुण सभी में एक दूसरे से भिन्न हैं। इन विभिन्नताओं का विचार न करते हुए किसी भी कवि का समस्त सजातीय कवियों में से एक साथ स्थान निर्णित कर देना सर्वथा भ्रामक एवं निराधार होगा। केशव का व्यक्तित्व देव की अपेक्षा कहीं अधिक बहुपक्षी है, अतः उनके लिए तो यह बात और भी अधिक आवश्यक है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति साहित्यकार के दो धरातल हैं जहां से वह अपना निर्माण करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव के दोनों धरातल पुष्ट हैं। उनकी प्रतिभा ने कवि रूप में नहीं आचार्य रूप में भी अनेकत्र चमक पैदा की है। उनकी व्युत्पत्ति ने आचार्यत्व ही नहीं उनके कवित्व की भी प्राण प्रतिष्ठा की है। केशव की व्युत्पत्ति ने उन्हें एक प्रौढ़ आचार्य बनाया है। उनकी व्युत्पत्ति की रेखाएं तीन क्षेत्रों में अधिक स्पष्टता से उभरी हैं। पहला काव्यशास्त्र, दूसरा दर्शन और तीसरा धर्म भक्ति शास्त्र। इन तीनों में काव्यशास्त्रीय पक्ष अधिक मुखर एवं प्रसिद्ध है। काव्यशास्त्रीय पक्ष का मूल्यांकन हम आचार्यत्व शीर्षक अध्याय में कर चुके हैं। अपने समय तक परिनिष्ठित समस्त संस्कृत साहित्य शास्त्र का ज्ञान उन्हें है, उस ज्ञान का अंधानुकरण नहीं। अपनी निजी अभिरुचि एवं मान्यताओं को भी पूर्ण स्थान मिला है। यद्यपि रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया का प्रणयन एक शिक्षक की दृष्टि से ही हुआ है और एक शिक्षक का काम अपनी बात कहना नहीं प्रौढ़ साहित्यकारों की बात को अच्छे ढंग से ही कहना मात्र होता है, किंतु केशव का शिक्षक इतने तक ही सीमित नहीं रहा। एक आलोचक शिक्षक की भांति उसने अपना दृष्टिकोण भी सामने रखा है। वस्तुतः केशव का आचार्यत्व संस्कृत आचार्यत्व के उद्धरणी होते हुए भी उनके अपने दृष्टिकोण से ही उपस्थित किया गया है। वैसे रस के विषय में उन्होंने रसवादी आचार्यों को सामने रखा है, अलंकारों के लिए अलंकारवादी आचार्यों को। कवि प्रिया के आचार्यत्व में परिचयात्मकता अधिक है तो रसिक प्रिया के आचार्यत्व में मौलिकता का पुट अधिक। यह बात रस सामग्री के लक्षणों में स्पष्ट है। श्रृंगार के रस राजत्व की प्रतिष्ठा का उन्हें आग्रह है। यह युग की प्रतिध्वनि है जो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम केशव में साग्रह वाचाल होकर आई है। क्रियात्मक साहित्य ही युग एवं समाज से प्रभावित नहीं होता, आलोचना साहित्य भी होता है। केशव ने हिंदी की निजी आवश्यकताओं को समझाने का प्रयत्न किया है। संस्कृत साहित्य शास्त्र को परखते हुए अपनी सार ग्रहणी प्रवृत्ति से अपनी बुद्धि की सीमाओं के भीतर उन्होंने मान्यताओं का चयन किया। उन्होंने काव्यशास्त्र के प्रारंभिक युग की मान्यताओं तथा अपने काल तक विकसित हुई परंपराओं दोनों को ध्यान में रखकर हिंदी के लिए एक काव्यशास्त्र निर्मित करने का प्रयास किया है जो उस युग के पाठक और कवि दोनों को सहायक हो सके। इस काव्यशास्त्र में एक बात का अभाव रहा, वह था गद्य का अभाव। गद्य के अभाव में न तो केशव की निजी मान्यताओं और अभिरुचियों की स्थापना हो सकी और न प्राचीन मान्यताओं का विश्लेषण ही। अतः केशव का यह कार्य अस्पष्ट रहा। हमारा अनुमान है कि केशव अपने जिज्ञासु की तृप्ति मौखिक रूप में करते रहे होंगे, किंतु उनकी तर्क पद्धति लिखित रूप में न आ सकने के कारण इनका दिखाया मार्ग परवर्ती युग का जनपथ नहीं बन सका। आचार्यत्व की दृष्टि से रीतिकाल का अमौलिक युग न तो केशवी दृष्टिकोणों का विकास कर सका और न प्राचीन प्रौढ़ मान्यताओं को सामने रखकर उन्हें पढ़क ही सका। वह केवल केशव के महत्व से अभिभूत रहा, किंतु अपने चलने के लिए उसने 50 वर्ष बाद ही चिंतामणि द्वारा जयदेव और अप्पय दीक्षित का बनाया हुआ सरल मार्ग पकड़ लिया। दिशा उसने केशव से ली। लक्षणोदाहरण की पद्धति पर आचार्यत्व और कवित्व का संगम करने की यह परंपरा हिंदी में समारोह के साथ केशव के द्वारा ही प्रतिष्ठित हुई है। हिंदी साहित्य शास्त्र के प्रथम आचार्य होने का ऐतिहासिक महत्व केशव के लिए सुरक्षित है। चिंतामणि आदि पर परवर्ती आचार्य तो उनसे दिशा को की प्रेरणा लेकर कुवल्यानंद, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण जैसे सरल पुस्तकों की उद्धरणी करते रहे। केशव को संस्कृत के आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, जगन्नाथ जैसे महामहिम आचार्यों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने न किसी नूतन पथ का उद्घाटन किया, न किसी सिद्धांत विशेष का सतर्क प्रतिपादन। इन आचार्यों की तुलना में केशव का इतना ही महत्व है कि वे प्राचीन मान्यताओं का सुचारू अध्ययन करके उनके विषय में अपनी निजी धारणाएं बनाने की क्षमता जुटा सके। केशव की मौलिकता का स्वरूप यही है। वास्तव में आलोचना शास्त्र के अंतिम पदक्रमों में आकर जबकि सिद्धांत निरूपण का कार्य समाप्त हो चुका था, मौलिकता का यही रूप विशेष रह गया था। किंतु परवर्ती रीतिकाल में यह क्षमता भी लुप्त हो गई। यह देखकर हमारी दृष्टि में केशव का महत्व और भी बढ़ जाता है। केशव के आचार्यत्व का क्षेत्र मम्मट, विश्वनाथ के समान ही व्यापक है। रीतिकाल में केवल अलंकार क्षेत्र या नायिका भेद क्षेत्र में घूमने वाले कवि आचार्यों को छोड़ दें तो हमारे सामने प्रमुख पांच नाम आते हैं: कुलपति मिश्र, श्रीपति, भिखारी दास, प्रताप सिंह और देव, प्रताप शाही और देव। ये सब केशव के परवर्ती आचार्य हैं। केशव के हाथों रीतिकाल का शिलान्यास हुआ और इनके द्वारा भवन निर्माण। रीतिकाल के ये परवर्ती आचार्य मौलिकता की दृष्टि से केशव से बहुत पीछे हैं। हाँ, एक बात उसके पक्ष में अवश्य है, निजी मौलिकता की दृष्टि की गुंजाइश न रखने के कारण वे मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों के सिद्धांतों की उद्धरणी आदि सफलता से कर सके हैं। यह बात कुलपति, श्रीपति, भिखारी दास, प्रताप शाही चारों के लिए समान रूप से कही जा सकती है। देव तो इस गुण में भी इन आचार्यों से कुछ पीछे हैं। देव के विषय में डॉक्टर नगेंद्र की स्पष्ट स्वीकृति है कि देव ने मुक्त कंठ से उनका गौरव स्वीकार किया है और अनेक स्थलों पर उनका अनुकरण किया है। इसके अतिरिक्त जहां तक पांडित्य की गंभीरता का प्रश्न है, केशव देव से बढ़कर हैं। विषय प्रतिपादन की स्पष्टता और सिद्धांत के व्यवहारिक उपयोग की दृष्टि से श्रीपति और भिखारी दास केशव से निसंदेह अधिक सफल हैं। इस सफलता का कारण हम ऊपर बता चुके हैं। भिखारी दास के विषय में डॉक्टर नगेंद्र की सम्मति है। विवेचन की स्वच्छता, सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग तथा काव्य की प्रकृति का ज्ञान, इन तीनों के विचार से दास की तुलना में देव क्या कोई भी रीतिकालीन आचार्य नहीं ठहरता। उनका केवल एक ही पक्ष दुर्बल है, मौलिकता। वस्तुतः भिखारी दास संस्कृत साहित्य शास्त्र के सफल प्रशंसा के सफल उद्धरणीकार हैं, स्वतंत्र विचारक नहीं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा की हुई भिखारी दास की प्रशंसा की अपनी सीमा है। उन्होंने देव और केशव के रस संबंधी पक्ष को लेकर देव को अधिक गौरव दिया है। वे कहते हैं, केवल एक बात में देव स्पष्टता ही केशव से अधिक गौरव के अधिकारी हैं, वह है उनकी सूक्ष्म एवं गहरी चेतना, जो कि आलोचक अथवा आचार्य का एक मूलवर्ती गुण है। जहां तक भिखारी दास के कवि पक्ष का संबंध है, देव की रसमयता को स्वीकार करते हुए भी रसिक प्रिया में रस का अभाव हमें दृष्टिगत नहीं होता। समस्त रीतिकाल में केशव के समान व्यापक अध्ययन, गहरी पैठ एवं मौलिक दृष्टि वाला आचार्य अन्य नहीं दिखाई देता। हिंदी आचार्यत्व का आधुनिक स्वरूप बहुत परिवर्तित हो चुका है। केशव आधुनिक आचार्यों के सजातीय नहीं रह गए, अतः आधुनिक आचार्यों से उनकी तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र की ही शब्दावली में स्थान का निर्णय सजातियों में ही हो सकता है। इस प्रकार केशव ऐतिहासिक दृष्टि से भी हिंदी के प्रथम आचार्य नहीं है। प्रौढ़ता, व्यापकता एवं मौलिकता की दृष्टि से भी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भी हैं। वे रीतिकाल के युग निर्माता साहित्यकार हैं, यह बात कम महत्व की नहीं। युग निर्माण की दृष्टि से निर्गुण परंपरा में कबीर का, कृष्ण भक्ति परंपरा में सूर का, राम भक्ति परंपरा में तुलसी का जो स्थान है, साहित्य को एक निश्चित धारा में मोड़ देने की क्षमता की दृष्टि से रीति परंपरा में वही स्थान आचार्य केशव दास का है। केशव व्युत्पत्ति पक्षीय काव्यशास्त्रीय क्षेत्र में ही प्रौढ़ नहीं, दर्शन एवं धर्म शास्त्र के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पैठ है। यह सत्य है कि केशव मनु के समान धर्म नियंता नहीं, शंकर के समान दार्शनिक नहीं, तुलसी के समान भक्त नहीं, किंतु धर्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं भक्ति शास्त्र संबंधी उनका अध्ययन प्रशस्त है। दर्शन के क्षेत्र में वे तुलसी के समान ही सामंजस्यवादी हैं, तुलसी की अपेक्षा उनका सामंजस्य भी अधिक प्रशस्त है। तुलसी के दर्शन की आज तक खींचतान हो रही है। केशव का दर्शन स्पष्ट है, अद्वैतवाद, जिसके व्यवहारिक पक्ष में द्वैत की भूमि है और इसके साथ ही भक्ति, धर्म, योग, वैराग्य आदि सबकी समाई है। विज्ञान गीता उनके क्षेत्र की क्षमता का मूर्त प्रमाण है। केशव की व्युत्पत्ति का एक क्षेत्र और है, इतिहास। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका में तात्कालिक इतिहास की ऐसी सामग्री सुरक्षित है जिसका उल्लेख अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। विज्ञान गीता के रूप में प्रतीक काव्य लिखकर तथा इन उपर्युक्त रचनाओं के रूप में ऐतिहासिक काव्यों की रचना करके हिंदी साहित्य के समक्ष केशव ने दो सर्वथा नवीन साहित्यिक विधाओं के द्वार खोले थे। संस्कृत के लिए चाहे ये रचना विधाएं नवीन ना हो किंतु हिंदी के लिए अवश्य नई चीज थी। खेद है कि परवर्ती रीतियुग इन दिशाओं में प्रगति ना कर सका। जहाँ तक केशव के कवित्व पक्ष का संबंध है, केशव हमारे समक्ष रामचंद्रिका के प्रबंध कवि, विज्ञान गीता के प्रतीक, पाठ्य रूप रचिता तथा ऐतिहासिक काव्य कृतियों के निर्माता के रूप में आते हैं। जहाँ तक साहित्य की विधाओं का प्रश्न है, पिछली दो विधाएं उनकी अपनी हैं, यह हम ऊपर कह चुके हैं। मुक्तक कवि के रूप में रसिक प्रिया की सरसता का जादू शुक्ल जी तक की लेखनी पर बोल चुका है, अतः उसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अब रहता है उनका प्रबंध कवि रूप। इन क्षेत्र में उन पर कई प्रकार के आक्षेप लादे गए हैं। प्रबंध कौशल, भावुकता तथा प्रकृति निरीक्षण का अभाव एवं चमत्कार का फेर इन आक्षेपों में प्रमुख है। इन आक्षेपों में शुक्ल जी के मानदंडों की प्रतिध्वनि है। शुक्ल के मानदंड तुलसी को सामने रखकर बने हैं। प्रबंध रचना में केशव का दृष्टिकोण तुलसी से भिन्न है। उन्होंने रामचरित के अंशों का चुनाव वर्णन वैभव के अवकाश को ध्यान में रखकर किया है, तुलसी की भांति इस काव्य की दृष्टि से नहीं। रामचंद्रिका में वे नाटकीय तथ्यों से भी प्रभावित हुए हैं, इस दृष्टि से उन्होंने संवादात्मक सौंदर्य का उसमें पुट दिया है। प्रबंध सूत्रों की नाटकीय योजना करते हुए उन्होंने कथा संबंधी सूत्रों के अनिवार्य निर्वाह की ओर भी आग्रह पूर्वक ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक भावुकता का प्रश्न है, केशव की भावुकता तुलसी सूर की कोटि की भावुकता नहीं, किंतु रीतिकाल के अन्य कवि पंडितों की अपेक्षा उनकी भावुकता कम नहीं। देखे मुख भावे अनदेखई कमलचंद जैसे स्थलों को लेकर शुक्ल जी ने केशव में हृदयहीनता ही नहीं, हृदयहीनता की हद दिखाई है। किंतु आज शुक्ल जी की पक्षपातिनी दृष्टि पहचानी जा चुकी है और बहुत सी मान्यताओं से उनका पक्षपात सिद्ध हो चुका है। रही प्रकृति निरीक्षण एवं चमत्कार की बात, केशव के कई शताब्दी पूर्व से ही संस्कृत काव्य प्रकृति निरीक्षण से दूर हटता व चमत्कार की ओर चला आ रहा था। केशव उसी परंपरा के कवि हैं, निसंदेह वे प्रकृति के जन्मजात कवि नहीं। उनमें अलंकारिक चमत्कार का मोह भी सजग है, किंतु उनके अलंकारिक चमत्कार में दुर्हुता नहीं है। श्लेष, यमक आदि के कुछ स्थलों में दुर्हुता का आभास होता है, उसके दो कारण हैं। एक तो हम इस प्रकार की काव्य परंपरा से दूर पड़ चुके हैं, दूसरे इन अलंकार वाले स्थलों को हम विश्वनाथ, जयदेव आदि के लक्षणों की छाया में समझना चाहते हैं। केशव के लक्षण इन पिछले आचार्यों से भिन्न हैं, उनके श्लेष, यमक आदि उनके ही लक्षणों के अनुसार समझने पर उतने दुरूह नहीं रह जाते जितना आज समझे जाते हैं। निसंदेह हम रामचंद्रिका को रामचरितमानस के समकक्ष नहीं रख सकते, किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि रामचंद्रिका और रामचरितमानस दो भिन्न कोटि के महाकाव्य हैं। मानस के स्रोत में साहित्य मर्मक पंडित और हल वाले किसान समान रूप से अवगाहन करते हैं, दोनों उसकी समान पूजा करते हैं। मानस भक्ति का काव्य है, रामचंद्रिका दरबारी काव्य है, इसी कारण उसमें प्रभाव उत्पादन एवं चमत्कार के प्रति कलाकार की जागरूकता है। विश्व साहित्य का इतिहास उठा लीजिए, कोच और कुटिया के काव्य में कला की जागरूकता और अजागरूकता का अंतर मिलेगा। रामचंद्रिका मानस की अपेक्षा संस्कृत साहित्य के उत्तरयुगीन महाकाव्यों में अनुप्राणित हुई है। सत्य बात तो यह है कि ओरछा के रजत आसनों पर बैठकर सम्मान के भारों से बोझिल मस्तिष्क सदा रामचंद्रिका ही लिखते आए हैं, और सूर सरिता के पावन तट पर रामानंदी तिलक लंगोटी लगाकर रामचरितमानस न ओरछा में तुलसी मानस लिख पाते, न काशी में केशव की कलम चंद्रिका। केशव में भावुकता, कल्पना, रस, अलंकार, वर्णन वैभव, चमत्कार अपने अपने स्थान पर अलग अलग रचनाओं में सब कुछ है। सब मिलाकर केशव का कवि प्रतिभावान कवि की अपेक्षा शास्त्र कवि अधिक है, उनका कला पक्ष भाव की अपेक्षा अधिक मुखर है। कला पक्ष की दृष्टि से वे सूर और तुलसी से भी बढ़कर हैं। भाव और कला के सामंजस्य को ध्यान में रखकर उनका नंबर सूर तुलसी के निसंदेह पश्चात है। तुलसी की अपेक्षा सूर का भाव पक्ष संगत है, तुलसी में भाव और कला का अनायास सामंजस्य है। बिहार में सचेतन एवं सायास, केशव में कविता कामिनी की विशेष सज्जा के लिए आभूषणों का मोह है। रीतिकाल के अन्य सभी कवियों में केशव का स्थान महत्वपूर्ण है। कला के परिमार्जन में बिहारी उनसे कहीं प्रशस्त है। भावुकता और लाक्षणिकता, चारुता में घनानंद उनसे बहुत बढ़े हुए हैं। पद्माकर की झंकृतियां केशव को बहुत पीछे छोड़ जाती हैं। देव की रस चेतना को भी सभी स्वीकार करते हैं। और भी कलाकार हिंदी के पास हैं। हो सकता है कि उनमें कोई ना कोई गुण केशव से बहुत बढ़ चढ़ कर हों, किंतु सब मिलाकर केशव के पास जितना है उतना इन मध्ययुगीन कलाकारों में किसी के पास नहीं। अभिव्यंजना सामर्थ्य की दृष्टि से केशव की भाषा सूर तुलसी की अपेक्षा निर्बल है, किंतु व्यवस्था की दृष्टि से वह उनसे सबल है। ब्रज के इतिहास में व्यवस्था की ओर ध्यान सर्वप्रथम केशव का गया था। इस प्रयास का सफल परिपाक बिहारी में जाकर हुआ है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के पास अनेक रत्न हैं, जिनके नाम, गुण, उपयोगिता एवं प्रभाव भिन्न भिन्न हैं। हमारी ही बोली में हमारे हृदय और मस्तिष्क को एकदम झकझोर देने वाला कबीर के समान हिंदी में दूसरा कौन है? हमारी संस्कृति के समस्त सौंदर्य का प्रतिनिधि तुलसी के समान कौन है? भावों की उत्ताल तरंगों में लहरा देने वाला जादू के सूर के अतिरिक्त और किसके पास है? कल्पना लोक में भाव का तूलिका से सतरंगी चित्र अंकित करने में प्रसाद की कला का किसे उपमान बनाए? केशव का भी अपना महत्व है। आचार्यत्व को कवित्व से, व्युत्पत्ति को प्रतिभा से, पांडित्व को भावुकता से मिलाकर अपने बहुमुखी महत्व से अभिभूत कर देने की क्षमता रखने वाला केशव का दूसरा नाम देने के लिए हिंदी बहुत दिनों से सोच रहा है और न जाने कब तक उसे सोचना पड़ेगा। इस तरह यह शीर्षक केशव का हिंदी साहित्य में स्थान यहीं समाप्त होता है।